ओम शांति। आज की अगस्तवाणी है 5 मार्च 2004 की। हेडिंग दिया है कमजोर संस्कारों का संस्कार कर सच्ची होली मनाओ तब संसार परिवर्तन होगा। आज बाप दादा अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। कैसे बच्चों को देख रहे हैं? राज दुलारे। राज्य होता है ना, और सारे राज्य का दुलारा कौन होता है? हैं? जो राजा का बड़ा राजकुमार होता है वो सारे राज्य के लिए राज दुलारा होता है। तो बाप दादा चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं, देख रहे हैं। कहाँ का समाचार सुना रहे हैं? सूक्ष्म वतन का समाचार सुना रहे हैं, ऊपर वाले का नहीं। नीचे ही कोई राज दुलारे बच्चे हैं इस सृष्टि में, जो बाप दादा की नजर में राज दुलारे हैं। उन बच्चों को बाप दादा देख रहे हैं, और कोई एक स्थान विशेष से चुने हुए बच्चे नहीं हैं, चारों ओर से। क्या बोला? जो चारों ओर के से, चार दिशाएं होती है ना, ऐसे तो दिशाएं 10 होती है, नीचे ऊपर भी दिशाएं हैं, लेकिन वहां तो कोई दुनिया नहीं होती। शास्त्रों में लिख दिया है पाताल में भी दुनिया होती है, पातालपुरी, लेकिन ऐसा तो कुछ होता नहीं। ऊपर आकाश में भी दूसरे नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, सितारे हैं, उनमें भी कोई दुनिया नहीं है। बाकी रही इस पृथ्वी की चार दिशाओं और चार दिशाओं के ईशान कोण, चार कोने, तो 8 दिशाओं के माना सभी दिशाओं के बच्चे बाप दादा की नजर में हैं। ऐसे राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं ये परमात्मा दुलार। आप कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्माओं को ही प्राप्त होता है। कौन सा परमात्मा और कौन सा दुलार? ऊपर वाला परमात्मा नहीं है। लोग तो ऊपर नजर करके देखते हैं, हे परमात्मा हम तो रहा तुम्हारे दुलारे बच्चे हैं, लेकिन उस दुलार की बात नहीं कही। ये परमात्मा दुलार आप कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्माओं को प्राप्त होता है। कौन सा परमात्मा दुलार? जो साकार सृष्टि पर है परमात्मा, इस सृष्टि पर आया हुआ है, वो उन राज दुलारे बच्चों को दुलार दे रहा है। और वह दुलार कोटों में से कोई माना 500-700 करोड़ जो मनुष्य आत्माएं हैं, उनमें से कोई कोई आत्माओं को प्राप्त होता है। उनमें भी जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, कोटो में भी कोई और कोई में भी श्रेष्ठ आत्माओं को प्राप्त होता है। और प्राप्त है क्या? प्राप्त होगा नहीं, प्राप्त हुआ नहीं, अभी उन बच्चों को वो परमात्मा दुलार प्राप्त है। हर एक बच्चे के 3 राज तख्त देख रहे हैं। ये 3 तख्त सारे कल्प में संगम पर ही आप बच्चों को प्राप्त होते हैं। कौन से संगम पर? पुरुषोत्तम संगम युग पर। ऐसे तो संगम युग कलयुग का अंत का हिस्सा, सतयुग का आदि का हिस्सा, दोनों मिलाकर के 100 साल का है, उसमें सामान्य संगम युग भी है, और जो अभी चल रहा है जिसके लिए बोला इस संगम युग पर, वह है विशेष संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुष माना आत्मा है, आत्माओं के बीच में जो उत्तम उत्तम पाठधारी आत्माएं अब डिक्लेयर होने वाली है, इस रंगमंच पर प्रत्यक्ष होने वाली है, ऐसे संगम युग पर आप बच्चों को वो 3 तक प्राप्त होते हैं, और किसी युग में प्राप्त नहीं होते हैं। और जो चारों दिशाओं से कलेक्ट किए हुए बच्चे हैं उनके लिए बोला आप बच्चों को प्राप्त होते हैं, ये दिखाई दे रहे हैं 3 तख्त प्राप्त हुए हैं तो दिखाई भी देते होंगे। एक तो यह है भ्रकुटि रूपी तख्त जहां आत्मा विराजमान है, जिसे कहते हैं अकाल तख्त। क्या? अकाल तख्त जिस पर आत्मा चमक रही है, अकाल तख्त। ऐसा कौन सा तख्त होता है जिसको काल नहीं खाता, जो कभी नष्ट नहीं होता? वो सिखों में तो लकड़ी का तख्त बनाई दिया है, वो तो आज नहीं तो कल खलास हो ही जाएगा। लेकिन आप बच्चे नई दुनिया का फाउंडेशन लगाने वाले बच्चे हो, पुरानी दुनिया ध्वस्त हो जाएगी लेकिन आपका अकाल तख्त ध्वस्त नहीं होगा। आपके तख्त को काल खा नहीं सकेगा। अगर आपके तख्त को भी काल खा जाएगा तो नई दुनिया का फाउंडेशन कौन लगाएगा? तो पहला तो है ये भ्रकुटि रूपी तख्त। अमरनाथ के बच्चे कैसे होते हैं? अमर बच्चे होते हैं। दुनिया का विनाश भले हो जाए लेकिन नई सृष्टि का फाउंडेशन लगाने वाले कोई बच्चे तो बचेंगे ना। तो जिन्होंने प्रैक्टिस करके अभ्यास करके जैसा गीता में लिखा है दबोर मध्य प्राणमादेश सम्यक, भ्रकुटी के मध्य में अपनी आत्मा का ध्यान करे, तो आपने ये प्रैक्टिस करके अपने अकाल तख्त को पक्का कर लिया है, जिस पर ये आत्मा सितारा चमक रहा है, जिसकी रोशनी इन आंखों से निकल रही है। कोई की आंखों की रोशनी उजियाई हुई होती है, और जिसकी आत्मा पावरफुल होती है उसकी आंखों की रोशनी में से चमक दिखाई पड़ती है। तो आपकी आत्मा अकाल तख्त पर चमक रही है, और दूसरा तख्त है परमात्म दिल तख्त। आप जो चारों दिशाओं से चुने हुए बच्चे हो वो ऐसे भाग्यवान बच्चे हो जिन्होंने परमात्मा के दिल को भी जीत लिया है। क्या? बच्चे तो बहुत होते हैं बाप के, लेकिन ऐसे बच्चे कोई कोई होते हैं जो बाप के दिल को जीत लेते हैं। तो दूसरा तख्त है परमात्मा दिल तख्त। तो परमात्मा के दिल तख्त पर नसीन हो ना, पूछा। पूछे का मतलब क्या होता है?
जैसा होना चाहिए।
कोई कोई नहीं भी होंगे तो पूछ लिया, परमात्मा के दिल पर चढ़े हुए हो ना। और तीसरा है भविष्य का विश्व तख्त। जो दिखना जितना आत्मिक स्थिति में स्थिर रहता है उतना ही जास्ती उसका फाउंडेशन पक्का होने के कारण परमात्मा की भी याद आती है, और जिसको परमात्मा की याद का संग का रंग लगता है वो ईश्वरीय सेवा में आगे भी जाता है। बाप कौन से बच्चों को याद करते हैं? सर्वसेवुल बच्चों को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? कुछ न कुछ परसेंटेज में दिल पर चढ़े हुए होंगे तब तो याद करेंगे ना। तो तीसरा है भविष्य का विश्व तख्त। परमात्मा बाप जिन सर्वसेवुल बच्चों को याद करते हैं जरूर उनको राजयोग सिखाकर अनेक जन्मों की राजाई देते हैं। वर्षे में ये परमात्मा बाप का वर्षा है जो कोई कॉलेज में नहीं दिया जाता, कोई कॉलेज में ये वर्षा प्राप्त नहीं होता है। जन्म जन्मांतर के राजाएं हुए, महाराजाएं हुए, छोटे राजाएं हुए, बड़े राजाएं हुए, सम्राट हुए, उनको वो कंट्रोलिंग पावर किसने सिखाई? किसी ने तो सिखाई होगी, कभी तो सिखाई होगी, कोई टाइम तो मुकर्रर रहा होगा। तो ये संगम युग का ही ये विशेष टाइम है जहां बाप आकर के अपने राज दुलारे बच्चों को राजयोग सिखा करके जन्म जन्मांतर की राजाई देते हैं। तो सबसे भाग्यवान बने हो कौन से तख्त के कारण? तीन तख्त बताए। तीन तख्तों में ऐसा कौन सा तख्त है जिससे सबसे जास्ती भाग्यवान बनते हो? बाप का दिल तख्त। सबसे भाग्यवान बने हो औरों के मुकाबले भी जास्ती भाग्यवान बने हो और वो दिल तख्त नशीन बनने के कारण बने हो, बाप के दिल पर चढ़े हुए होने के कारण बने हो, ये परमात्मा दिल तख्त आप तकदीरवान बच्चों को ही प्राप्त है। कैसे बच्चों को प्राप्त है? तकदीरवान है। तकदीर कहाँ से बनती है? बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी ना है। माने पूर्व जन्मों में जिन्होंने अच्छे अच्छे कर्म करके अच्छा अपना भाग्य बना लिया है, ऐसे भाग्यवान बच्चे परमात्मा के दिल तक तो पर चढ़ जाते हैं। कोई कहे जब पहले से ही चढ़े हुए हैं तो अब पुरुषार्थ करने की क्या दरकार? लेकिन चढ़े हुए हैं वो पहले से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर जन्म में परमात्मा इस सृष्टि पर आता नहीं है। ऐसे नहीं कि त्रेता में राम के रूप में आ गया, सतयुग में भगवान बन गए कि हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए आ गया, वहां तो राक्षस होते ही नहीं। रामकृष्ण की दुनिया में तो बहुत सुख होता है, सात्विक दुनिया होती है, 16 कला संपूर्ण, 14 कला संपूर्ण। ये तो दुनिया में जब कलाएं घट जाती हैं, आत्मा की शक्ति छीण हो जाती है जन्म लेते लेते, द्वैत पैदा हो जाता है, द्वापर युग शुरू हो जाता है, दो दो राज्य दो दो धर्म शुरू हो जाते हैं, तब दुनिया में दुख बढ़ता है। तो जब दुख की दुनिया शुरू होती है द्वापर से, उस समय जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं जन्म जन्मांतर, उन अनेक जन्मों की किए हुए कर्मों के आधार पर उनको परमात्मा बाप की प्राप्ति होती है। और प्राप्ति होने के बाद भी, पहचान होने के बाद भी कोई उस पहचान का पूरा फायदा उठाते हैं और कोई फायदा नहीं उठाते हैं। जो फायदा उठाते हैं वो नंबरवार परमात्मा बाप के दिल पर चढ़ करके बैठते हैं। तो ये दिल तख्त आप तकदीरवान बच्चों को ही प्राप्त है। भविष्य विश्व का राज तख्त तो प्राप्त होना ही है, लेकिन अधिकारी कौन बनता है? भविष्य विश्व तख्त का कौन अधिकारी बनता है? उसके लक्षण क्या होंगे? जो इस समय स्वराज्य अधिकारी बनता है, स्व माने आत्मा, राज्य माने कंट्रोल। इस शरीर में 10 इंद्रियां हैं, मन बुद्धि रूपी आत्मा के कंट्रोल से ये 10 इंद्रियां बाहर हो जाती हैं। अगर परमात्मा बाप का बनने के बाद, नॉलेज लेने के बाद इंद्रियां कंट्रोल से बाहर होती रहती हैं, तो इसका मतलब राजयोग अभी सीखा है या नहीं सीखा है? नहीं सीखा है। तो विश्व के राज्य का अधिकारी बनने से पहले स्व के राज्य का अधिकारी बनना पड़े राजयोग के बल पर। स्वराज्य नहीं तो विश्व का राज्य भी नहीं, क्योंकि इस समय के स्वराज्य अधिकार द्वारा ही विश्व का राज्य प्राप्त होता है। जितना जितना इस समय योगी जीवन में अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर हम कंट्रोल कर लेते हैं, आत्मा की जो 3 शक्तियां हैं, मन बुद्धि और संस्कार, इन 3 के ऊपर कंट्रोलर बन जाते हैं, उतना ही विश्व का राज्यभाग प्राप्त हो सकता है। जो इस समय स्वराज्य अधिकारी बनता है वो ही जन्म जन्मांतर का राज्य अधिकारी बनता है। विश्व के राज्य के सर्व संस्कार इस समय आत्मा में भरते हो क्या? जैसे वो फिल्मों की शूटिंग होती है ना, जैसी फिल्म शूट की जाएगी, जैसा ड्रामा का रिहर्सल किया जाएगा अथवा कैसेट में जैसा रिकॉर्ड भरा जाएगा वैसा ही रिकॉर्ड चलेगा, वैसे ही रील घूमेगी। तो इस संगम युग में हरेक की आत्मा रूपी रिकॉर्ड में वो परमात्मा बाप जो डायरेक्टर बनकर के आया हुआ है, निराकारी रूप में पर्दे के पीछे रहता है और साकार रूप में हीरो पार्टधारी के अंदर प्रवेश करके पार्ट बजाता है। जैसा गीता में लिखा हुआ है, प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। तो वो बच्चों से रिहर्सल कराए रहा है, आत्मा में अनेक जन्मों का रिकॉर्ड नूद हो रहा है। जब इंद्रियां कंट्रोल से बाहर हो जाती है, चाहे आंख हो चाहे कान हो चाहे कर्म इंद्रियां हो, ज्ञान इंद्रियां हो या कर्म इंद्रियां हो, कोई भी अगर कंट्रोल से बाहर होती है तो समझ लो हम प्रजा बन गए। उस जन्म में जिस समय ये शूटिंग हो रही है, तो सब प्रकार के संस्कार, राजा बनने के, महाराजा बनने के, रानी बनने के, दास दासी बनने के, रॉयल फैमिली के दास दासी बनने के, अथवा साहूकार प्रजावर्ग के दास दासी बनने के, या फर्स्ट क्लास प्रजा बनने के, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास प्रजा बनने के संस्कार अभी आत्मा में भरे जा रहे। तो हरेक अपने को सदा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो? पूछा, हरेक अपने को स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो? सिर्फ इतना ही नहीं पूछा, क्या पूछा? सदा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो? सदा शब्द लगाया, जो भविष्य राज्य का गायन है जानते हो ना? क्या गायन है? भविष्य आने वाले सतयुग में जो राज्य होगा उसका गायन क्या है? एक धर्म एक राज्य, लॉ एंड ऑर्डर, सुख शांति संपत्ति से भरपूर राज्य याद आता है? कितनी बार ये स्वराज्य और विश्व राज्य किए है? कितनी बार संगम युग में स्वराज्य किए है और भविष्य में कितनी बार ये विश्व का राज्य लिया है? हिटलर, नेपोलियन, ये बड़े बड़े महत्वाकांक्षी हुए, उन्होंने तो नहीं लिया विश्व के ऊपर राज्य, इच्छा की, लेकिन ला नहीं है कि कोई बाहुबल के आधार पर सारे विश्व के ऊपर राज्य कर सके। ये तो भारत के झंडे का ही गायन है, क्या विश्व विजय करके दिखलावे, क्या कपड़े का झंडा, कपड़े का झंडा विश्व विजय करता है क्या? नहीं, कपड़ा है शरीर रूपी वस्त्र की यादगार। तीन रंग के जो कपड़े हैं वो ब्रह्मा विष्णु शंकर के चरित्र की यादगार है, उन्होंने ऐसा चरित्र बजाया है। वो चरित्र को धारण करने वाले तीन वस्त्रों को जो चैतन्य रूप में अभी सृष्टि पर कार्य कर रहे हैं, उनका संसार में झंडा बुलंद करना है। कौन बुलंद करेगा? जो बाप की पहचान करने वाले बच्चे होंगे, जिन्होंने बाप के तीन विशेष पुत्रों को ब्रह्मा विष्णु शंकर को पहचाना होगा, वो ही उनका झंडा बुलंद करेंगे। तो कहा कि ऐसा एक धर्म एक राज्य, लॉ और ऑर्डर, इस तरह का राज्य कितनी बार है विश्व में स्थापन किया है? हैं? कितनी बार विश्व में स्थापन किया है? अनगिनत बार। अरे अनगिनत बार की तो अभी स्मृति ही नहीं आई है आत्मा में, है? अभी एक कल्प की तो स्मृति आ जाए, एक कल्प अर्थात चतुर्युग की तो स्मृति आ जाए कि चारों युगों में हम आत्मा ने कितने जन्म लिए, कहाँ कहाँ कैसे कैसे जन्म लिए। नहीं तो बाबा कहते हैं वो पार्टधारी तो बेवकूफ, जो अपने पार्ट को न जानता हो। हम आत्मा रूपी पार्टधारी है ना, ये भ्रकुटी के मध्य में सितारा आत्मा, ये पार्टधारी है ना। अनेक वस्त्र छोड़ छोड़ करके नए नए वस्त्र हर जन्म में ग्रहण करती जाती है, तो आत्मा को अपने पार्ट की स्मृति तो होनी चाहिए। उस ड्रामा में भी कोई एक्टर कई बार कपड़े बदल करके अनेक पार्ट बजाता है। तुम्हारा बेहद का ड्रामा है और तुमने बेहद का 84 जन्मों का चक्कर लगाया है, तो तुम बेहद के पार्टधारी हो। तो बेहद के पार्टधारियों को अपने पार्ट की स्मृति तो आनी चाहिए। तो पूछा कितनी बार ये स्वराज्य और विश्व का राज्य लिया है, एक कल्प में तो बताओ। हैं? कलयुग और द्वापर युग में तो सवाल ही नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ तो हिंसा का राज्य होता है, परमात्मा बाप आकर के हिंसा करना नहीं सिखाता। ये तो मनुष्य गुरु है जिन्होंने हिंसा करना सिखाया, परमात्मा बाप तो ऐसा लॉ एंड ऑर्डर वाला राज्य योग बल के आधार पर स्थापन कराती है। और वो योग बल की यादगार भारत के शास्त्रों में अभी भी मौजूद है कि राजा युधिष्ठिर ने राजस अश्वमेध यज्ञ किया था, चारों दिशाओं पर राज्य प्राप्त करने के लिए। राम और राम के चार भाइयों ने भी वो अश्वमेध यज्ञ किया था। वो समझते हैं कोई घोड़ा छोड़ा जाता है, जानवर घोड़ा, ऐसी बात नहीं है। ये मन को ही घोड़ा कहा जाता है, ये मन रूपी घोड़े को अगर लगाम में न रखा जाए तो ये गड्ढे में ले जाता है। तो परमात्मा बाप ने आकर के मन को कंट्रोल करने की प्रक्रिया सिखाई कि मन को एकाग्र कैसे किया जाए। वो दुनिया में तो मनुष्य गुरु योग सिखाते हैं तो हाथ पांव का योग सिखा देते हैं, उल्टे हो जाओ, सीधे हो जाओ, पट हो जाओ, चित्त हो जाओ। परमात्मा बाप कहते हैं ये तो शारीरिक योग है, शरीर को स्वस्थ बनाएंगे एक जन्म के लिए, लेकिन अनेक जन्मों के लिए आत्मा स्वस्थ नहीं बनेगी। इसके लिए तो जो मन बुद्धि रूपी आत्मा है उसकी एकाग्रता की प्रैक्टिस करना जरूरी है, और वो एकाग्रता कोई मनुष्य गुरु नहीं सिखा सकते। आत्मा की पावर तो जरूर परमात्मा बाप ही बढ़ावेगा, वही ऐसी प्रक्रिया सिखा सकता है। तो ऐसा मन बुद्धि को कंट्रोल करने वाला जो राजयोग सिखाया है परमात्मा बाप ने, और विश्व की बादशाही दी है, वो विश्व की बादशाही कितने बार ली है कोई जवाब नहीं दे रहा है। कई बार ली है? अरे एक कलप की तो बताओ कितने बार ली है।
ये समझ की बातें है ना,
समझ बताओ, समझ आ दो।
21 जन्मों की तो ली है,
21 जन्मों की विश्व की बादशाही,
84 जन्मों की,
21 जन्मों की विश्व की बादशाही। वहाँ विश्व होता है, 21 जन्मों में विश्व धर्म होते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे ही धर्म मौजूद होते हैं क्या है? होते हैं है? बताओ ना, नहीं होते तो विश्व की बादशाही कैसे? सतयुग में सतयुग की बादशाही कहेंगे, त्रेता में त्रेता की बादशाही कहेंगे। विश्व की बादशाही तो तभी कही जाएगी जहाँ विश्व धर्म मौजूद हो, और विश्व की 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्मा है सारी मौजूद हो। तो कितनी बार राज्य ऐसा प्राप्त किया है? एक बार किया। अगर अनेक बार किया होता तो उसका गायन होता। मुसलमानों के शास्त्रों में, क्रिश्चियंस के शास्त्रों में कहीं गायन नहीं है? किनके शास्त्रों में गायन है? भारत के जो शास्त्र हैं उन शास्त्रों में ये गायन है, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। सारे विश्व का योग बल के आधार पर नाक बनता है, माने सारे विश्व की आत्माओं की नाक में नकेल डाल देता है, नाक लेता है, सबको कंट्रोल कर लेता है, और हिंसा के आधार पर नहीं,
योग बल के आधार,
जिस आधार पर करता है वो चित्रों में वो दिखाया जाता है। जैसे और धर्म पिताएं हैं नंबरवार दिखाए जाते हैं योग युक्त स्टेज में, चाहे क्राइस्ट हो, चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे गुरु नानक हो, उन्होंने भी योग युक्त स्टेज पकड़ी है। लेकिन वो धर्म पिताएं वो अपने को भगवान नहीं कहते थे, वो भी ऊपर की ओर इशारा करते थे, चाहे क्राइस्ट हो चाहे गुरु नानक हो। इसका मतलब कि वो ऊपर वाला जो धर्म पिताओं का भी बाप है, बापों का भी बाप है, वो ऐसा निराला राजयोग सिखाता है और संगम युग पर सिखाता है कि संगम युग पर इसी जन्म में इसी शरीर से कोई आत्माएं सिकील दे बच्चे के रूप में बाप की ऐसी अजीज बनती है कि सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल कर लेती है। उनको दो रूपों में दिखाया गया है, कृष्ण को भी दिखाया गया है, नटराज और नटवर, ये दो रूपों में गायन है। दो रूपों में जो गायन है वो ज्ञान डांस का गायन है। नट माना नृत्य करने वालों में नटवर श्रेष्ठ, नटराज नटवर श्रेष्ठ, नटराज नृत्य करने वालों का राजा, युगल डांस प्रसिद्ध है। कौन सा? उदय शंकर डांस। क्या? परमात्मा बाप जब इस सृष्टि पर उदय होता है तो युगल जोड़ी बनकर के संसार में प्रत्यक्ष होता है। वो जगतम पितरम वंदे कहे जाते हैं। शंकर पार्वती को सारे जगत का मात पिता कहा जाता है। उन मात पिता को विश्व की हर धर्म की आत्माएं मान्यता देती है। उनके शास्त्रों में मान्यता है, हिंदू शास्त्रों में। जगतम पितरम, जगत के मात पिता कहे जाते हैं शंकर पार्वती। मुस्लिम शास्त्रों में उनको आदम और हव्वा कहा जाता है, सृष्टि के आदि पुरुष। और अंग्रेजों के शास्त्रों में उनको एडम ईव कहा जाता है। वो सारी सृष्टि के पितर हैं। तो ऐसा राज्य सिर्फ परमात्मा बाप ही जब इस सृष्टि पर आते हैं तो संगम युग में एक बार वो विश्व का राज्य स्थापन करते हैं। पूछा कितना बार यह स्वराज्य विश्व का राज्य किया है, तो क्या जवाब आया? एक बार किया है। क्लियर याद आता है कि याद दिलाने से याद आता है? क्लियर याद किसे आएगा है? और याद दिलाने से किसे याद आएगा है? अरे प्रैक्टिकल जिसने किया होगा उसे क्लियर याद आएगा, और जिसने नंबर वार किया होगा उसे याद दिलाने से याद आएगा। तो पूछा क्लियर याद आता है कि याद करने से याद आता है? कल राज्य किया था। क्या? कल राज्य किया था और अब फिर से कल राज्य करना है। बाबा के लिए तो हजारों साल की सस्ती कल दिखाई पड़ती है, क्योंकि वो तो ब्रह्मा का दिन सत्युग त्रेता और द्वापर कलयुग ब्रह्मा का रात कह देते हैं, तो उन्हें तो ऐसे ही लगता है। क्या? तो आराम से जैसे कुमार अपने चकले में डंडा डाल के चकला एक बार घुमा देता है और आराम से बैठ जाता है, तो ऐसे ही शशि रूपी चक्र में ज्ञान का दंड एक बार शिव बाप आकर संगम युग में घुमाते हैं और हजारों साल के लिए ऊपर बैठ जाते हैं। क्योंकि जहाँ बैठ जाते हैं उस परम धाम में वहाँ समय तो होता नहीं है। तो जब वो आते हैं हजारों साल के बाद तो उन्हें ऐसे लगता है कि जैसे कल लिया था तुम बच्चों ने राज्य, और आज फिर लेना है, कल से फिर लेना है, तो आजकल की बात दिखाई देती। तो पूछा ऐसे स्पष्ट स्मृति में आता है, अब बताओ किसे याद आएगा? आएगा याद है? कल लिया था और कल फिर लेना है विश्व का राज्य, ऐसे स्पष्ट स्मृति में आता है? नहीं आता है? कल लिया था का मतलब शूटिंग पीरियड में ब्राह्मणों की दुनिया का विश्व का राज्य यज्ञ के आदि में भी लिया था, शूटिंग पीरियड में। और जब अंतिम आहुति होती है, यज्ञ रचते हैं ना, तो अंतिम आहुति होती है शंकर जी की, सब स्वाहा हो जाता है, जो भी सामग्री बची खुची है सारी स्वाहा। स्वाहा क्यों कहते हैं? स्वामाना अपना, इसमें जो कुछ भी अपनापन है इस दुनिया में, क्या वो सब स्वाहा, या सब नष्ट होता है। जो कुछ अपनापन बनाया हुआ है तो हाय निकलती है, अरे सब कुछ हाथ से निकल गया। तो पूछा ऐसे स्पष्ट स्मृति में आता है? यह स्पष्ट स्मृति उस आत्मा को होगी जो अभी सदा स्वराज्य अधिकारी होगा। क्या? कब कौन सी कर्मेंद्रियों से कौन सा कार्य करना है और कब नहीं करना है। कर्म होते हैं ना, माहौल होता है, व्यक्ति होते हैं, अलग अलग टाइम होता है, तो कोई काम कब किया जाता है, कोई काम कब किया जाता है, कोई किसी के सामने किया जाता है, कोई सबके सामने नहीं किया जाता है, कोई गुप्त में किया जाता है, कोई प्रत्यक्ष में किया जाता है। जैसे बाप दादा ने बोला ना, इसने ही मिलन पर्दे के अंदर अच्छा होता है, तो अच्छा ही काम करना चाहिए या बुरा काम करना चाहिए? अच्छा ही करना चाहिए। दुनिया का कोई भी काम हो, रोने का काम हो, हंसने का काम हो, उसका तौर तरीका होता है। तो जो स्वराज्य अधिकारी बच्चे ऐसे होंगे, उन बच्चों को ही ये नंबरवार विश्व का राज्य इस प्रति में आता होगा। क्यों अनेक बच्चों क्यों बोला है? यहाँ व्यक्तवाणी में तो बोल दिया उस आत्मा को होगी, उस माना एक आत्मा को, लेकिन वो एक तो चित्रों में शास्त्रों में फकीर दिखाया जाता है, राजा दिखाया जाता है, राजमुकुट वाला, या फकीर दिखाया जाता है? वो विश्वनाथ तो फकीर के रूप में, बैगर के रूप में दिखाया जाता है। माना वो विश्व की बादशाही खुद अपने हाथ में नहीं लेता, किसको देता है? बच्चों को देता है। माना उसके कुछ राज्य अधिकारी बच्चे हैं, जो राज्य अधिकारी बच्चे विश्व के राज्य को संचालित करते हैं। कितने होते हैं वो बच्चे? हुसैन भाई, आपने तो कुरान सारी पढ़ी हुई है, हैं? उसमें लिखा है कि खुदा के तख्त को 8 फरिश्तों ने उठाया हुआ था, तो ये विश्व के राज्य का तख्त है ना, कोई लकड़ी का तो नहीं होगा। तो उस तख्त को संभालने वाले कोई तो राज्य अधिकारी होंगे, और सिर्फ विश्व के राज्य को अधिकार, राज्य के अधिकार को संभालने वाले अधिकारी नहीं होंगे वो 8। आगे आने वाले जो और जन्म हैं, क्योंकि बोला है 21 जन्म के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बनता है, तो जो द्वापर और कलयुग में जो सम्राट हुए हैं, उस समय उनके राज्य को संभालने वाले कोई अष्टरत्न और नवरत्न वो भी गाये हुए हैं, तो अनेक जन्म वो राज्य का तख्त संभालने वाले 8 बच्चे 8 दिशाओं के प्रसिद्ध होते हैं। भारतीय परंपरा में उन अष्टदेवों का, इष्ट देवों का स्पेशल पूजन होता है। पूजा किसकी होती है, हैं? काम जीते जगत जीत की पूजा होगी या माया से हार खाने वाले की पूजा होगी? माया जीत जो बना होगा, माया माना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विकारों के पंजे से जो अपने को स्थिति परिस्थिति व्यक्ति और टाइम के अनुसार बचा कर रखता होगा, उसकी बात है। तो पूछा, ऐसे स्वराज्य अधिकारी हो, सदा के स्वराज्य अधिकारी हो या कभी कभी के राज्य अधिकारी हो, है? कभी कभी के हो या सदा के हो, क्या कहेंगे? पूछ रहे हैं बार बार, सदा स्वराज्य अधिकारी हो। अब व्यक्त बाप दादा माउंट आबू में गुलजार दादी के तन में आकर बार बार पूछ रहे हैं, किसके सामने पूछ रहे हैं, हैं? जिनको राजयोग का है, राजयोग की हवा भी नहीं लगी हुई है, वो समझते हैं कि मनुष्य गुरु ही राजयोग सिखाते हैं। 18 जनवरी 69 को ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ दिया तो उसके बाद हम दीदी दादी दादा ही राजयोग सिखाने के अधिकारी टाइटलधारी हैं। तो बार बार पूछ रहे सदा सुराज अधिकारी हो, डबल फॉरेनर्स का टर्न है क्या का?
डबल फॉरेनर्स का टर्न।
हाँ, सुराज अधिकारी माना भारतवासियों का टर्न नहीं, वो अभी भी कुंभकर्णी निद्रा में सोए पड़े क्या? जो विश्व के राज्य को लेने की महत्वाकांक्षा है वो हिस्ट्री में भारतवासियों की रही है या विदेशियों की रही है? महत्वाकांक्षा किन की रही है? भारतवासियों किसी ने हिस्ट्री में किसी भारतवासी ने विश्व के ऊपर राज्य करके दिखाया? कपड़े का झंडा लेकर के गाते रहते विश्व विजय करके वो दिखलावे तब हो बे प्रणपूर्ण हमारा, लेकिन हिस्ट्री में ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि किसी ने महत्वाकांक्षा की हो राजा ने कि सारे विश्व के ऊपर हम कंट्रोल करेंगे। तो ऐसी महत्वाकांक्षा रखने वाले कौन हुए? विदेशी लोग हुए, चाहे वो हिटलर हो, चाहे नेपोलियन बोनापार्ट हो या सिकंदर हो, सारे ही विदेशी थे। तो जिन्होंने जो इच्छा करे हो मनमाही हरिप्रसाद कछु दुर्लभ नहीं, क्या नियम है? जो इच्छा करता है, जो हिम्मत करता है, उसको हिम्मत की मदद देने के लिए बाप इस सृष्टि पर आ जाता है। तो बोला आज डबल फॉरेनर्स का टर्न है ना, माना विश्व के राज्य के अधिकार की बात कर रहे थे, कौन कर रहे थे ये विश्व के राज्य के अधिकार की बात? कौन कर रहा था? बाप दादा, वो तो अव्यक्त बाप दादा। अव्यक्त बाप दादा भी उनके लिए भी क्या कहा? बाप साकार से आकारी बना, अव्यक्त पाटधारी बना, आकारी से निराकारी निसंकल्पी और निराकारी से फिर साकार बनेगा। विश्व का राज्य भाग बांटेगा तो साकार में बांटेगा या आकार में निराकार में बांटेगा? साकार में बांटेगा, लेकिन किसको बांटेगा?
जो स्वराज अधिकारी बच्चे
हैं, जो स्वराज अधिकारी बच्चे हैं उनके लिए बोला आज डबल फॉरेनर्स का टर्न है ना, क्योंकि बाप भी स्वदेशी बनकर आता है या विदेशी बनकर आता है? विश्व का बाप है ना, अगर सिर्फ भारत का बाप हो तो स्वदेशी बन करके आएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आएगा है? फिर तो उत्तर भारत वाले जो राम के पुजारी वो तो झट पहचान लेंगे है, लेकिन वो तो आता है मूतपलीती कपड़ धोती बन करके। क्या जो भी पतित आत्माएं हैं उन पतितों को पावन बनाने के लिए आता है तो वो स्वदेशी बनकर नहीं आ सकता, वो विदेशी बनकर आता है। विदेशी बाप है तो बच्चे भी कैसे होंगे? विदेशी बच्चे होंगे। तो ऐसे विश्व के राज्य को अधिकार को प्राप्त करने वाले डबल फॉरेनर्स बच्चों का टर्न है ना, पूछा या जवाब दे दिया? पूछा है या जवाब दे दिया? नाक क्यों लगाया? ना लगाया है सम्मति लेने के रूप में। डबल फॉरेनर्स का टर्न है ना, तो क्या जवाब आएगा? है? हाँ है। तो स्वराज अधिकारी सदा हो, चलो टर्न तो है, लेकिन ये चेकिंग करो कि सदा कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य अधिकारी अनुभव करते हो। अच्छा, पांडव सदा है, क्योंकि शक्तियां तो फिर भी कंट्रोल कर लेती हैं बहुत कुछ है। जहाँ काम जीते जगत जीत की बात आती है तो जो कन्याएं माताएं हैं वो तो फिर भी इंद्रियों के ऊपर बहुत कुछ कंट्रोल करती है, इसलिए उनसे नहीं पूछा। किससे पूछा? पांडवों से पूछा, जिन पांडवों को पहले ही मुरली में टाइटल दे दिया बाबा ने। क्या टाइटल दे दिया? सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है, एकांत पाके बिना बार किए मानते नहीं। तो जो है दुर्योधन दुशासन उनसे तो पूछना भी नहीं चाहिए, लेकिन पूछ रहे हैं। पांडव सदा है, क्योंकि फिर भी इतनी बड़ी दुनिया में पांडव कितने निकलते हैं? पांच पांडव तो निकलते हैं ना। सदा शब्द पूछ रहे हैं किससे? पांडवों से। तो कोई फट से हाथ उठा दे क्यों किससे कहा? पांडवों से कहा। सदा शब्द पूछ रहे हैं क्यों? जब इसे एक जन्म में छोटा सा तो जन्म है, है? हर एक जन्म की तो बात नहीं कर रहे हैं, इस ईश्वरीय जन्म की बात कर रहे हैं। जब एक जन्म में इस छोटे से जन्म में, तो इस छोटे से जन्म में अगर सदा सुराज्य अधिकारी नहीं है तो 21 जन्म का सदा सुराज्य कैसे प्राप्त होगा? एक जन्म में तो कम से कम बन जाना चाहिए, कि वो भी नहीं बन सकते है? और एक जन्म में भी पूरा 100 साल का जन्म, पूरे 100 साल की बात नहीं बता रहे हैं है? यहाँ तो 100 साल एज है भी नहीं किसी की है? हाँ, जो भी संगम युग में भी दो दो तीन तीन जन्म होते हैं ब्राह्मणों के है? तीन जन्म होंगे तो एवरेज एज 30 साल रह जाती है, एवरेज एज। तो संगम युग में पूरे जन्म की बात नहीं कर रहे हैं कि सदा सुराज्य अधिकारी बन गए हो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, नहीं, स्वल्प काल की बात कह रहे हैं। जब से परमात्मा बाप के ऊपर निश्चय हुआ, परमात्मा बाप के बच्चे बने, निश्चय पत्र लिख कर दिया कोर्ट स्टाम्प पर कि हमने परमात्मा बाप को पहचान लिया और हम निश्चय करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सारा जीवन क्या पवित्र रहेंगे। पवित्रता की बात कौन सी कर्मेंद्रिय से कनेक्टेड है? आंख और काम इंद्रिय से। उसके लिए खास प्रतिज्ञा कराई जाती है। तो बच्चा जब नौजवान होता है तभी तो ये प्रश्न पैदा होता है। तो बचपन और किशोरावस्था तो निकल गई, और बुढ़ापे में भी इसकी कोई परीक्षा खास नहीं होती है। तो जो मनुष्य के जन्म के चार अवस्थाएं हैं, उनमें से तीन अवस्थाएं तो निकल गई, बाकी एक युवावस्था की बात बची। तो पूछा कि इस छोटे से एक जन्म में अगर सदा सुराज्य अधिकारी नहीं है तो 21 जन्म का सदा सुराज्य कैसे प्राप्त होगा? माना 108 राजाएं तो बनेंगे, अनेक जन्मों का नंबरवार राज्य लेने वाले, जिनकी यादगार हर धर्म में माला सिमरण की जाती है। माला के मन के उन आत्माओं की यादगार में हर धर्म में स्मरण किए जाते हैं, लेकिन उन 108 में भी 8 विशेष आत्माएं। तो कहा कि 21 जन्म का सदा सुराज्य कैसे प्राप्त होगा अगर एक जन्म में ही नहीं हुआ? 21 जन्म का राज्य अधिकारी बनना है या कभी कभी का बनना है, या कभी बनना है कभी नहीं बनना है, क्या मंजूर है? किससे पूछा? पांडव से। सदा बनना है, पीछे ही पड़ गए। सदा पूछ रहे हैं। अरे कांड तो हिलाओ, और बातों में तो बड़ी जल्दी कांड हिलाए देते हैं, हाथ उठाए देते हैं। इस बात में कोई पांडव कांड नहीं हिला रहे, ना हाथ उठाए रहे, कांड तो हिलाओ। अच्छा, 21 जन्म ही राज्य अधिकारी बनना है, राज्य अधिकारी अर्थात रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकारी, क्या प्रजा के ही राज्य अधिकारी नहीं, प्रजा को कंट्रोल करने वाले नहीं, राज्य अधिकारी माना जो 16,000 की रॉयल फैमिली तैयार होती है त्रेता के अंत तक, उसके ऊपर भी कंट्रोल करने वाले कितने होंगे? आठ होंगे। तो रॉयल फैमिली में भी राज अधिकारी तख्त पर तो थोड़े बैठेंगे ना, लेकिन वहाँ जितना तख्त अधिकारी को समान है उतना ही रॉयल फैमिली को भी समान होगा। क्या जो विश्व के राज्य का तख्त अधिकारी होगा उसका जितना समान होगा उतना ही रॉयल फैमिली का जो अधिकारी होगा उसका भी बहुत ऊंचा मान मर्तबा होगा। उनको भी राज्य अधिकारी कहेंगे। जैसे सामान्य रूप में भी हिस्ट्री में कोई राजाएं होते थे तो वो अपने मंत्री महामंत्री सेनापति चुनते थे ना, होशियार कोई चुनते होंगे या कोई बुद्धू को चुन लेते होंगे, जो होशियार होंगे उन्हीं। तो यहाँ तो परमात्मा बाप आया हुआ है, परमात्मा बाप पहली होशियारी कौन सी देखता है? अपने बच्चों में पहली होशियारी कौन सी देखता है? हाँ वो तो है, सच्च बाप है, ट्रुथ गॉड फादर कहा जाता है, सच्च खंड की स्थापना करने वाला है, तो जरूर सच्चे बच्चों को ही चुनता होगा। दुनिया के मुकाबले तो नंबर वार ज्यादा ही सच्चे होंगे। लेकिन ऐसे जो राज्य अधिकारी बच्चे होंगे उनकी एक खास विशेषता हर बच्चे की बताइए, बाप की पहचान क्या? देखो उत्तर भारत के कोई नहीं बता रहे हैं, दक्षिण भारत की कन्या बैठ के बता रही है, अपनी असली पहचान को ही भूलते जा रहे हैं। जो बाप के बच्चे हैं उनकी विशेषता कौन सी बताई? ऐसा कोई भी बाप का बच्चा नहीं होगा जो बाप को न पहचानता हो। अच्छा बेसिक नॉलेज में चलने वाले वो इस लिस्ट में आवेंगे कि नहीं आवेंगे? बाप की पहचान की लिस्ट में बेसिक नॉलेज में चलने वाले जो माउंट आबू के हाल में बाप दादा के सामने बैठे हुए थे वो इस लिस्ट में आवेंगे या नहीं आवेंगे? क्यों नहीं आवेंगे? उन्होंने बाप को पहचान लिया, बाप है बिंदु है? अरे बिंदु तो है, लेकिन बिंदु तो सब कीड़े मकोड़े पशु पक्षी मनुष्य आत्माएं सभी बिंदु है। ये कोई स्पेशल बाप की पहचान नहीं हुई। स्पेशल पहचान तब होती है जब आत्मा शरीर धारण करती है। किसी को ऐसे करके थोड़े बुलाया जाता, ए आत्मा इधर आओ, बुलाते हैं क्या? आत्मा की कोई पेक्युलरिटी नहीं होती है, कोई पहचान नहीं होती है, वो आत्मा शरीर के द्वारा ही पहचानी जाती है। तो शरीर के द्वारा जो विश्व की बादशाही को कंट्रोल करने वाले बच्चे हैं वो भी शरीर के द्वारा ही पहचाने जाएंगे। संसार उनको पहचानेगा, हर धर्म की मनुष्य आत्माएं उनको पहचानेंगी, और भारत में तो उनकी पूजा होती ही चली आई है नवग्रहों के रूप में। कोई भी छोटा बड़ा अनुष्ठान करेंगे तो किसका पूजन करेंगे? पहले नवग्रहों का पूजन करेंगे। तो अष्टदेव तो बहुत प्रसिद्ध हैं। तो बोला रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकारी अर्थात स्वराज्य अधिकारी, तख्त पर तो थोड़े बैठेंगे ना, लेकिन वहाँ जितना तख्त अधिकारी को समान है उतना ही रॉयल फैमिली को भी समान है। वहाँ माना कहाँ? सतयुग में। सतयुग में कितनी गद्दियाँ होंगी? आठ गद्दियाँ। आठ गद्दियों में एक ही बैठता रहेगा लगातार है या नंबर वार बैठेंगे? नंबर वार बैठेंगे तो कितने बैठेंगे? आठ बैठेंगे। तो जो आठ बैठेंगे उनके लिए बताया कि तख्त पर तो थोड़े बैठेंगे ना, कितने बैठेंगे? सतयुग में तो आठ ही बैठेंगे, लेकिन वहाँ जितना तख्त अधिकारी को समान है उतना ही रॉयल फैमिली को भी समान है। उनको भी राज अधिकारी कहेंगे। क्या उनको भी राज अधिकारी कहेंगे? लेकिन हिसाब अभी के कनेक्शन से है, अभी जितना स्वराज अधिकारी उतने वहाँ राज अधिकारी बनेंगे। अभी कभी कभी तो वहाँ भी कभी कभी। क्या कहा?
यहाँ कभी कभी तो
वहाँ भी कभी कभी। तो जो विश्व का बापूजी है, जो हीरो पार्टधारी है, वो कभी कभी प्राप्त करेगा? एक ही बार प्राप्त करेगा कि आठों जन्मों में प्राप्त करेगा? सतयुग के 8 जन्मों में अधिकारी बन जाएगा, तख्त अधिकारी के एक ही बार बनेगा। अरे वो तो 8 जन्मों में 8 बार भी नहीं बनता है, संगमयुग में बनता है, और संगमयुग में ही विश्व की बातचीत होती है। अभी सदा तो वहां भी सदा, तो बाप दादा से संपूर्ण अधिकार लेना अर्थात तो वर्तमान और भविष्य का पूरा पूरा 21 जन्म राज्य अधिकारी बनना, तो डबल फॉरेनर से पूरा अधिकारी लेने, पूरा अधिकार लेने वाले हो या आधा लेने वाले हो या थोड़ा लेने वाले हो, फिर डबल फॉरेनर से पूछा। यहाँ डबल फॉरेनर किसको बताया गया है? बेहद है ज्ञान की भाषा में हद के फॉरेनर्स की बात नहीं, डबल फॉरेनर्स माना जो परमात्मा बाप के बनने के बाद लौकिक परिवार वालों से भी ठुकराए जाए, लौकिक दुनिया से भी ठुकराए जाए, उनके दिल से दूर हो जाए, बहुत दूर चले गए। क्या लौकिक परिवार और लौकिक संबंधियों, लौकिक दुनिया वालों से उनके दिल से दूर चले गए, माने विदेशी हो गए, एक सिंगल विदेशी बने, और उसके बाद बेसिक नॉलेज ली तो लौकिक वालों से बहुत दूर चले गए, विदेशी हो गए, और फिर जब बेसिक नॉलेज में आए, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में आए जहाँ बेसिक नॉलेज दी जाती है, तो जो बेसिक वाले हैं उनकी नजरों से भी बहुत दूर चले गए, उनके दिल से भी उतर गए, उन्होंने भी धक्का दे दिया, तो डबल विदेशी हो गए। स्वदेश तो नजदीक होता है और विदेश बहुत दूर होता है, तो बोला डबल फॉरेनर से पूरा अधिकार लेने वाले हो या आधा अधिकार लेने वाले हो या थोड़ा थोड़ा लेने वाले हो, क्या पूरा अधिकार लेना है? पूछा, पूरा एक जन्म भी कम नहीं है। तो ज्ञान तो ये कहता है कि हर जन्म की विश्व की हर जन्म की बात चाहिए तो किसी को मिलती नहीं, सदा एक सा समय किसी का सुना और नहीं देखा है, देखा है किसी ने? समय तो बदलता रहता है, स्थिति पदमान मर्तबा भी बदलता रहता है, हिस्ट्री उठा के देख लो। तो क्या करना पड़ेगा है? अनेक जन्म का राज्य भाग लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूछा, बार बार पूछ रहे तो जवाब तो देना चाहिए, क्या करना पड़ेगा? स्वराज्य अधिकारी बनना पड़ेगा, पड़ेगा माना कंपल्सन है। अगर अगर जन्म जन्मांतर का राजा बनना है तो अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। बाप दादा तो हरेक बच्चे को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं, क्या कहा? हर एक बच्चे को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं, हर एक को विश्व की बादशाही दे देते हैं, ले लो, फिर नंबर वार क्यों हो जाते हैं? वो बात अगली मुरली में बताएंगे। ओम शांति।
कौन कौन सी पार्टी आई हुई है? बंगलोर और पहले दूर दूर वालों को ले लो, बंगलोर, आसम, आसम और है? और नासिक के कितने लोग आए? 12 लोग आए। वो जो बेसिक में दीदी दादी दादाएं होते ना, वो पहले आगे 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 अपने को कर देते, तो ऐसे यहाँ नहीं करना। क्या दूसरा भला आगे करे, बाप दादा भला आगे करें, लेकिन हम खुद आगे आगे होकर के कोई बात में न बैठ जाएं। तो बंगलोर, आसम, महाराष्ट्र नहीं, नासिक और हैं औरंगाबाद, अच्छा ये सब महाराष्ट्र हो गया, औरंगाबाद, मुंबई, नासिक, अच्छा महाराष्ट्र हुआ, चलो। और आंध्र प्रदेश से कौन आया है? कौन आया, कहाँ आई है कि यहाँ पहले से ही है? और तो पहले से ही है ना, आज की वाणी में कौन कौन आए, पार्टियाँ कौन कौन आई है? ऐसे तो लंदन के ये हुसैन भाई भी बैठे हुए हैं, तो पार्टी थोड़ा ही कही जाएगी। अच्छा आसाम, बंगलोर और नासिक, ठीक, ओम शांति।